सो एक बार फिर से हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बधाई देते हैं और बधाई देते हुए आपका स्वागत करते हैं कि आप इस कलीसिया में आए, और हमारा विश्वास है कि आप जब वचन को सुन रहे हैं तो उस बात को जानेंगे कि वास्तविक रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म का मतलब क्या है। जब आप टीवी को देखते हैं, जब आप बाहर दूसरी कहानियों को सुनते हैं, तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कथाओं को तोड़ मरोड़ करके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और कोई भी टीवी चैनल प्रभु यीशु मसीह के वचन की सच्चाई को सच्चाई के साथ नहीं प्रकट करता और ना करेगा। सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे एक बार मौका मिला और उन्होंने चाहा कि मैं टीवी पे कुछ बोलूं, काफी साल हो गए, और जब उन्होंने मेरे को कहा तो उन्होंने कहा आप ये नहीं कहेंगे। मैंने कहा ये नहीं कहेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? तो मैंने कहा धन्यवाद आपके अवसर के लिए, क्योंकि सच है, आज सच्चाई को सुनना कठिन है, और लोग बड़े दिन को तमाशा समझते हैं, मौज मस्ती समझते हैं, खाना पीना समझते हैं, नशा करना समझते हैं, पर यह बाइबल का चित्रण नहीं है। जिस परमेश्वर के नाम से हम बड़ा दिन मनाते हैं, सब मनाते हैं, वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर के गुण हैं, और परमेश्वर को परमेश्वर के गुणों के द्वारा जाना जा सकता है। अगर हम परमेश्वर के गुण के खोजी नहीं है तो हम कदापि सच्चाई को नहीं प्राप्त कर सकते, और यह बाइबल में हम साफ देखते हैं परमेश्वर पवित्र है इसलिए मनुष्य से पवित्रता चाहता है, परमेश्वर प्रेमी है इसलिए मनुष्य के जीवन में सच्चे प्रेम को देखना चाहता है, वो प्रेम नहीं जो संसार और शरीर देता है, लेकिन परमेश्वर जो प्रेम देता है, पवित्र प्रेम। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर न्याय को चाहता है, न्याय और सच्चाई को चाहता है। सो हमें परमेश्वर की बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं, लेकिन जो आज हम ध्यान देना चाहते हैं, पिछले दिनों में हम लूका के सुसमाचार पर विचार कर रहे थे और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसे नहीं हो गया कि एकदम से कोई 25 तारीख आ गई और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए, नहीं नहीं, एक लंबी कथा है, परमेश्वर की लंबी योजना है, सनातन योजना, और इस योजना में परमेश्वर ने मनुष्य को शामिल किया है। परमेश्वर ने अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य को शामिल किया है। क्यों परमेश्वर ने अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य को शामिल किया? और अभी हमारी बहन ने लूका उसके दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर 20 पद तक पढ़ा था, उसी स्थल पर हम थोड़ी देर पर विचार करना चाहेंगे लूका, और बाइबल में, मेरी बाइबल में अगर दूसरे भाग में जाएंगे तो 67 पृष्ठ है, लेकिन छोटी वाली 85 नंबर, जो छोटी आपके पास नया नियम दिया गया है, ये नया नियम ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी सेवा और उसके बाद आगे के बारे में वर्णन करता है। बाइबल के दो भाग हैं, संपूर्ण बाइबल में 66 पुस्तक है, एक भाग पुराना नियम है, दूसरा भाग नया नियम है। पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले जो सृष्टि से लेकर के उसके योजना को वर्णन किया गया है, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उसकी सेवा, उसका बलिदान करना, उसके द्वारा उसके बाद कलीसिया के स्थापित होना, जो आज कलीसिया बैठी हुई है उसका स्थापित होना, और उसका सुसमाचार का प्रचार करना, ये सब कुछ का वर्णन है, और आध्यात्मिक जीवन कैसे व्यतीत किया जाए उसका वर्णन है, और तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे तो क्या होगा उनका वर्णन है। तो नए नियम में ये सारी चीजों का वर्णन है जो आज हम थोड़ी देर के लिए विचार करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, लोगों के अंदर अलग अलग मिथ्याएं, अलग भावनाएं, पर परमेश्वर की एक सनातन योजना थी, और ये सनातन योजना थी कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और जब पाप आ गया तो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। अभी हम और थोड़ी सी बातें देखेंगे, पर परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं बनाया है। मनुष्य किसी बंदर से या अणु से या इससे उत्पन्न नहीं हुआ। एक बात का सिद्धांत है, एक सिद्धांत को रखिए, कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता, कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता। अगर परमेश्वर सामर्थ्य है तो वही है जो कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकता या कुछ उत्पन्न नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अनंत परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है, वो कुछ नहीं से कुछ बना सकता है। यही परमेश्वर और मनुष्य में फर्क है, और परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं बनाया है उसकी स्वयं सृष्टि की है, स्वयं रचना की है, और उसका नाम आदम रखा गया है। जो आज आदमी शब्द है वो उसी से आरंभ हुआ जो आदम शब्द आया है। सबसे पहले प्राणी का नाम आदम रखा गया, सबसे पहले स्त्री का नाम हवा रखा गया, उसको नारी कहा गया। ये बाइबल के वचन के अनुसार है और वह आज हम संसार में देखते हैं। तो मनुष्य की मेहनत क्यों सोचती है, लेकिन बाइबल किन बातों को वर्णन करती है, आज बड़ा दिन क्या है और बड़ा दिन क्यों, और इसका मेरे और आपके जीवन में क्या अर्थ है। जब हम यहां देखते हैं तो यहां पर यीशु के जन्म के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी केवल नए नियम में शुरू नहीं होती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी वो योजना बहुत पहले से मनुष्य की सृष्टि के आबाद से शुरू हो जाती है। और समय व समय में लोगों ने भविष्यवाणी की, 700 साल पहले, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले दाऊद राजा, जिसका नाम सुना होगा, दाऊद राजा का बेटा सुलेमान था। सुलेमान आज भी बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे क्लासेस में उसकी कहानी सुनाई जाती है। सुलेमान संसार का सबसे बुद्धिमान राजा माना गया है और वो बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी थी। सुलेमान दाऊद का बेटा था और उसी के आगे चलकर हम वंशज को देखते हैं और उसी से आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को जानने के लिए हमें बाइबल को जानना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जब यहां पर है तो हम यहां पर कुछ बातों को देखना चाहते हैं, कुछ जो हमने बच्चों के द्वारा स्क्रिप्ट में देखा है, लेकिन 8 पद से मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। एक परमेश्वर का दूत, जिसको आप स्वर्गदूत कह सकते हैं, वो परमेश्वर की ओर से इन लोगों के बीच में भेजा गया। ये लोग जो चरवाए अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, उनको कुछ नहीं मालूम था। जरूर उस समय ऐतिहासिक रीति से, राजनीतिक रीति से मनुष्य कुछ परिस्थिति का सामना कर रहा था, और सामना क्या कर रहा था थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि यहूदी लोग रोमी शासन में रह करके रोमी शासन से भयभीत थे, और वो इस बात की प्रतीक्षा में थे, जितने भी यहूदी हैं वो इस बात की प्रतीक्षा में थे कि कोई राजा आएगा। उनको मालूम था कि कोई राजा आएगा, और उनकी अपेक्षा ये थी कि जैसे कोई राजा आएगा तो राजा हमारा, हमें छुटकारा दिलाएगा और हम इस शासन से छुटकारा पा लेंगे। कई इतिहास में हम कई सारी बातों को पाते हैं। हम देखते हैं हमारे देश में, हमारे देश में एक समय था जो अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों से हमारी प्रजा, हमारा देश महताश था, परेशान था, और तब उसके बाद उसकी आजादी के लिए लोगों की प्रतीक्षा थी कब उसको आजादी मिलेगी, कब कुछ होगा, कौन अगवा होगा, कौन होगा। और हम देखते हैं इतिहास में किस रीति से एक दिन हमारे देश को आजादी मिली, वो शारीरिक आजादी थी। ठीक उसी तरह से वही परिस्थिति उस समय की थी, और लोग इस बात की अपेक्षा करते कि कोई राजा होगा और राजा आएगा और वो आकर के हमें छुड़ाएगा। दूसरी बात, वो इस बात को सोचे थे कि अगर राजा आएगा हमारे हमारे को बचाने के लिए, तो उस राजा का जन्म एक बहुत बड़े राज परिवार में होगा। एक राजा जो छुड़ाना चाहता है उसके एक ऐसे परिवार में होगा जो बहुत बड़ा होगा, और तब आसानी से। लेकिन सब कुछ ऐसा ही नहीं हुआ। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर की योजना जो है मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य की समझ और मनुष्य की योजना से अलग रहती है। मनुष्य आज भी अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से छुटकारा चाह रहा है, मोक्ष चाह रहा है, विश्राम चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहा। पर बाइबल परमेश्वर की योजना का खुलासा करती है, और वो समय सबसे पहले जब चरवाहे थे तो एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने आकर के एक संदेश दिया, संदेश दिया। ये लोग भयभीत हो गए जब उसकी ज्योति देखी, लिखा है तब स्वर्गदूत ने 10 पद में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। यह सच है, कैसे समय में आनंद का समाचार, एक दुख के समय में, एक परेशानी के समय में, एक चिंता के समय में, एक घबराहट के समय में, एक दबाव के समय में, ऐसे समय में। मेरे प्रियो, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, आपने सुना होगा, जो आज एक लंबी रेस शुरू हुई है वो एथेंस शुरू हुई है, मैराथन, जो मैराथन रेस शुरू हुई है वो यूनान से शुरू हुई है, और यूनान में एक युद्ध चल रहा था और लगभग युद्ध चलते हुए यूनान का एक सिपाही था जो करीब बहुत लगभग 23 किलोमीटर दूर से वो संदेश लेकर आया था और भागता 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 आया था कि यूनान जीत गया है, यूनान जीत गया है अपने शत्रुओं से। और तब भागते भागते वो आकर, जैसे ही उसने आके अपने देश में अपने जगह में संदेश दिया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो उनके लिए एक आनंद का संदेश था, उसके आनंद, वो व्यक्ति तथक गया था, उसकी मृत्यु, उसी के नाम से ये मैराथन शुरू हुआ है। क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि एक ने संदेश दिया है, क्या संदेश, हमारा देश जीत गया है। यद्यपि उस संदेश को पहुंचाने के लिए उसको अपने जीवन को देना पड़ा, अपने जीवन को बलिदान करना पड़ा। मेरे प्रिय, सच है, एक अच्छा संदेश कीमत चुकाकर हमारे पास पहुंचाया जाता है। और बाइबल जो अच्छा संदेश हमारे पास लाई है वो केवल ये स्वर्गदूतों की बात नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत तो इनको कुछ कह रहे थे, ये लोग परेशान थे, ये सब कुछ कह रहे थे। और तब उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात कहा, ऐसी स्थिति में चरवाओं का संदेश, चरवाओं के संदेश क्या है, उसने कहा, देखो डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। कौन सा आनंद? वो आनंद जो संसार देता है, वो आनंद जो शरीर देता है, वो आनंद जो थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन के लिए धन और संपत्ति देती है, या शरीर स्वास्थ्य देता है, वो आनंद नहीं, वो आनंद नहीं। ये आनंद जो संदेश लेकर आया वो आनंद असीम आनंद है जिसके बारे में बात करता है, वो आनंद समझ से परे आनंद है, वो आनंद वर्णन से बाहर आनंद है, वो आनंद जो परमेश्वर मनुष्य को देने के लिए इस संसार में आया है, इस संसार में आया। और वो कहता है क्या है, बड़े आनंद का समाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक कुल के लिए नहीं, किसी एक भाषा के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक समुदाय समूह के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेरे और आपके लिए आए, वो किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं आए। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म आरंभ नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्रिश्चियन धर्म आरंभ करने के लिए नहीं आए। धर्म तो मनुष्य बनाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य अभिप्राय अलग। और यहां वो कहता है कि मैं तुम्हें वो संदेश सुना रहा हूं, वो शुभ समाचार सुना रहा हूं, वो सुंदर समाचार सुना रहा हूं, वो सुसंदेश, वो सुसमाचार, आनंद का समाचार है जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सबका उद्धार चाहता है, परमेश्वर ने सबके लिए अपने आप को बलिदान किया, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, किसी एक समूह के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक कुल के लिए नहीं। ये जाति देश ये सब तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए और मनुष्य के हाथ में। हम हमारे देश हम जानते हैं कि रोज कुछ ना कुछ नगरों का, शहरों का नाम बदला जाता है। बांग्लादेश कुछ साल पहले हमारे देश में आपने जानते हैं बना है। तो जो कुछ भी है ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इनको परमेश्वर नहीं बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया, बुद्धि सामर्थ्य दिया कि वो उसका संचालन करे उसके अनुसार। लेकिन सबसे बड़ के बात यह, परमेश्वर मनुष्य को मनुष्य देखता है, वो जाति के रूप में नहीं दिखता, वो भाषा के रूप में नहीं दिखता, वो कुल के रूप में नहीं दिखता, वो देश के रूप में नहीं दिखता, वो ऊंचे नीचे के रूप में नहीं दिखता, मनुष्य को मनुष्य देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। और परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था तो उसने अपने स्वरूप में बनाया था, अपने स्वरूप में, अपने पवित्रता में, अपने प्रेम में, अपनी धार्मिकता में, अपनी सच्चाई में, अपनी खराई में मनुष्य को बनाया था। लेकिन जब आज हम देखते हैं तो वो ये कह रहा है कि जो सब मनुष्यों के लिए होगा, क्या होगा, क्या संदेश है? वो कह रहा है, आओ बड़े आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो कह रहा है एक उद्धारकर्ता जन्मा। उद्धारकर्ता का मतलब क्या है, क्यों ये शब्द बाइबल में आया है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है? एक अगुआ नहीं, एक राजा नहीं, एक लीडर नहीं, एक बहुत बड़ा विद्वान नहीं, यद्यपि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में वो सारे गुण विद्वान थे, वो सारे गुण, लेकिन यहां पर जो परिचय दिया गया, यहां पर जो परिचय दिया गया वो परिचय अलग है। यहां पर परिचय एक उद्धारकर्ता के रूप में दिया गया है, यहां पर एक परिचय उद्धारकर्ता के रूप में दिया गया है। उद्धारकर्ता का या उद्धार का मतलब क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी आशा इस संसार में क्या है? क्या रोटी कपड़ा मकान? जरूर वो हो सकती है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर मनुष्य के जीवन में उद्धार की आवश्यकता है। अगर आज दिन पर दिन गिरजे, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, धार्मिक स्थल बढ़ते चले आ रहे हैं तो क्यों? मनुष्य की खोज है, मनुष्य की चाहना है, मनुष्य की इच्छा है, मनुष्य मोक्ष चाहता है, मनुष्य मुक्ति चाहता है, मनुष्य उद्धार चाहता है। मोक्ष, मुक्ति, मुक्ति उद्धार का मतलब क्या है? और ये सब इस बात को मानने के तैयार होते हैं, मुक्ति क्या है, उद्धार क्या है, मोक्ष क्या है, कि परमेश्वर की आत्मा के साथ मनुष्य की आत्मा का विलय हो जाना, मेल हो जाना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही उद्धार है। और मनुष्य जानता है इस बात को, कोई मनुष्य इनकार नहीं करता कि हर एक मनुष्य को उद्धार की या मुक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए तो खोज करता है, इसीलिए धार्मिक क्रियाकलाप करता है, इसीलिए दान पुण्य करता है, इसी धार्मिक यात्रा करता है और बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। मेरे प्रियो, यह अद्भुत बात है, यह अद्भुत बात है। मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है, मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है और परमेश्वर को खोजने के लिए हर एक प्रकार का वो यत्न कर रहा है और तरह तरह से अपने तरीकों से वो यत्न करके उसके हृदय में ये इच्छा है कि किसी ना किसी तरह से वो परमेश्वर तक पहुंच जाए, परमेश्वर तक पहुंच जाए। लेकिन बाइबल अद्भुत रीति से बात को बताती है, बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, ना अपने प्रयास के द्वारा, न अपने कार्य के द्वारा, न अपने धर्म के द्वारा, न अपनी विधियों के द्वारा। इसीलिए जब मनुष्य स्वयं परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सका तो परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जिसके लिए मैंने आरंभ में कहा कि परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य की रचना की, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया, वो मेरे और आप तक पहुंच गया। चूंकि मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था, आप चांद तक पहुंच सकते हैं, आप कुछ और आगे जा सकते हैं, अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं, कुछ और स्थान तक पहुंचते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप सूरज में नहीं पहुंच सकते, ना केवल उसके प्रकाश के कारण लेकिन उसकी ज्वाला के कारण। और इसको समझना है, एक सीमा है जहां तक मनुष्य पहुंच सकता है, उस सीमा के आगे नहीं बढ़ सकता। और यही कारण है कि परमेश्वर जानता है, जो कि परमेश्वर सृष्टि का रचने वाला है, उसने उसने चांद, तारे, सूरज, इन सब की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की। बाइबल में पहली जो पुस्तक है, पहली पुस्तक है जो आपके उस पुस्तक में पूरी रीति से दिया है कैसे संसार की सृष्टि हुई। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप जानने के लिए जरूर बाइबल की पहली पुस्तक के कम से कम 3 अध्याय को पढ़ें। उन 3 अध्याय में पढ़ने के द्वारा आपको यह मालूम चलेगा कि परमेश्वर ने संसार की कैसे सृष्टि की, परमेश्वर ने मनुष्य की कैसे सृष्टि की, और कैसे पाप आया, और पाप के कारण मनुष्य कैसे दूर हो गया परमेश्वर से, और तब परमेश्वर को क्या उपाय मनुष्य को बचाने के लिए करना पड़ा। परमेश्वर ने स्वयं पहल की मनुष्य को बचाने के लिए। और यहां पर जो संदेश दे रहा है वो संदेश दे रहा, देखो एक शुभ संदेश यह है, एक शुभ समाचार यह है, एक अच्छा समाचार यह है, यह समाचार है कि तुम्हारे मध्य में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो आगे चल के कह रहा है, जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ है, यीशु जो उद्धार करने के लिए संसार में आया। यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए। उन्होंने जब इस पृथ्वी से प्रधान परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में थे उन्होंने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक समुदाय स्थापित करने आया हूं, उन्होंने नहीं कहा मैं किसी धर्म को देने के आया हूं, उन्होंने नहीं कहा कि मैं कुछ लोगों के लिए, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा उसने जगत से अर्थात मुझसे और आपसे प्रेम किया। मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, या कृष्ण जो है, ये एक धर्म नहीं लेकिन तथ्य है, एक सच्चाई, एक जीवन देती है। आज से 42 साल पहले मैं इसकी सच्चाई को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं, आज कितने लोग हैं जो उसकी सच्चाई को जाने। सो यहां पर उद्धारकर्ता जमना क्यों, ये उद्धारकर्ता का क्यों उसका संसार में मनुष्य बनकर आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में तीन मुख्य बातें हैं, तीन मुख्य बातें हैं, और वो उसको हमें जानना है। और यहां परमेश्वर के वचन में प्रेरित काम में लिखा हुआ है, प्रेरित काम जो बाइबल जानते हैं उसमें, प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय में, कोई मेहरबान से इस छोटी वाली पुस्तक में प्रेस बता देगा, दूसरा अध्याय 22-23-24 पद, 178 नंबर प्रेस पे आप पेज में निकाल लीजिए, और उसमें जो 22 लिखा हुआ है, 22-23-24, तीन मुख्य बातें जिनको यीशु के बारे में जाना है, क्योंकि जन्म तो उसका बहुत पहले हो चुका, आज से लगभग 2019 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आ गए। अब उनके जन्म के बाद क्या हुआ उसको जाना है, क्यों हुआ है, क्यों वो उद्धार करता है, क्यों उस समय उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, क्यों हुआ उद्धारकर्ता का जन्म, यहां पर हम देखते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह उस समय इसराइलियों कह रहे हैं, इन बातों को सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था, वो मनुष्य होकर आया, जिसको परमेश्वर ने सामर्थ के कार्य आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से जो उसने उसके द्वारा तुम्हारे समक्ष के तुम पर प्रकट किया, जैसे कि तुम स्वयं जानते हो। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मैं एक बात को कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म सत्य है, तथ्य है, इसमें कोई कहानी नहीं। कैसे, बार बार उस बात को बताऊं, पिछले सर ने बोला था, आप स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप तिथि को लिखते हैं, डेट लिखते हैं, बीसी और एडी कहां से शुरू हुआ, प्रभु यीशु मसीह से शुरू हुआ, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, आप उसमें तिथि लिखते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, बिना उसके अधूरा है। आप जेब में पैसा लेके चल रहे हैं, अगर उसमें सन नहीं पड़ा हो तो बेकार है। मैं बार बार इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहता हूं, लोग वैसे तो उसका इनकार करते हैं लेकिन प्रतिदिन उसके सामने अपने सर को झुकाते हैं, प्रतिदिन उसके सामने, यह सच वास्तव है, यह सच्चाई है, कितना विरोध करेंगे करिए। लेकिन यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ तो तीस साल वो अपने माता पिता की अधीनता में रहे, 3 साल लगभग उन्होंने बाहर रहकर सेवा करी, और सेवा करके उन्होंने शिक्षा दी, जो सच्चाई की शिक्षा थी, जो धार्मिकता की शिक्षा थी, जो पवित्रता की शिक्षा थी, जो प्रेम और मेल की शिक्षा थी। उन्होंने घृणा की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने हत्या करने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने बदला लेने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने कोई नकारात्मक शिक्षा नहीं दी। उनके शिक्षा में प्रेम है, क्षमा है, भलाई है, दया है, करुणा है, ये उनके शिक्षा में, आप उठा के पूरा पढ़ लीजिए। उनके कार्य में न केवल उन्होंने शिक्षा दी लेकिन उनके कार्य में प्रेम है, दया है, क्षमा है। प्रेम में होकर उन्होंने मरीजों को, बीमारों को चंगा किया, उन पर दया दिखाई, जो पापी उनके पास आए उनके अपराध को, उनके पाप को क्षमा किया, मुर्दों को उन्होंने जिलाया, अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि उसने परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि मैं और पिता एक है। क्या मतलब है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मनुष्य बनकर आए ताकि वो प्रतिनिधि होकर के, ताकि उस कार्य कर सके वो जो मनुष्य के लिए अनिवार्य था, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन बातों को प्रदर्शित कर सके, दिखा सके। और ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने उस प्रेम में होकर, दया में होकर बीमारों को चंगा किया, सामर्थ्य आंधी को रोका, मुर्दों को जुलाया, यह परमेश्वर की सेवा थी। पहली चीज उनके अंदर, ना केवल लेकिन दूसरा काम क्या करा, तब दूसरी बात 23 पद में पढ़ते हैं, इसी मनुष्य को जो परमेश्वर के पूर्व निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने विधर्मियों के हाथों पर क्रूस पर किलो से ठुकवा कर मार डाला। वो प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी, प्रेमी, दयालु, क्षमा करने वाला, वो मेरे और आपके पाप को लेकर के, क्योंकि मैं और आप अपने आप से पाप से छुटकारा नहीं पा सकते थे, मेरे धर्म के कर्म मुझे पाप से छुटकारा नहीं दे सकते। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करने पाता, लेकिन जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, लेकिन मुझ पाप जो मुझ में वास करता है, अर्थात मुझे नियंत्रण करने वाला कौन है, और वही मुझे बाध्य करता है जो मैं नहीं करना चाहता। और उस पाप का उपचार मेरे कर्म नहीं है, उस पाप का उपचार मेरे धार्मिकता का नहीं है, उस काम का पाप का उपचार मेरे तीन रीति विधि नहीं है, वो पाप का उपचार मैं अपने आप समय नहीं कसता। पाप एक भयंकर बीमारी है, पाप एक भयंकर बीमारी है, कोढ़ के समान है वो, जिस रीति से कोढ़ शरीर में जरा सा लगता है और धीरे 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 बढ़ता चला जाता, फैलता चला जाता है, उसी ठीक इसी प्रकार से पाप भी है। और मनुष्य कितनी बार पाप को छिपाना चाहता है, मनुष्य कितनी बार पाप को छिपाना चाहता है, लेकिन एक पाप दूसरे पाप को जन्म दे देता है। एक हत्या करिए, उस हत्या करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, एक हत्या करिए, हत्या करके नहीं, कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितना वो करना पड़ता है और कितना वो बढ़ता चलाता है, तो हर पाप के साथ दूसरा पाप जुड़ता 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 चलाता है। और पाप मनुष्य को विनाश करता है, पाप मनुष्य को विनाश करता है। और बाइबल कहती है कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का गमन, ये सब जिसके द्वारा हमारे जीवन में पाप उत्पन्न होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो निष्पाप हो, यहां तक कि छोटा जन्म का वध, अरे छोटा बच्चा है वो तो उसमें भी क्या पाप है, नहीं नहीं उस छोटे बच्चे में भी पाप है। अगर 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा भी है, अगर उसकी मां उसको गोद से उतार देती है और वो दूसरे बच्चे को गोदी में ले लेती है, तो उस बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है, वो क्यों रोने लगता है, क्यों चिल्लाने लगता है, कहां से झुंझलाट आ जाती है, किसने उसको, अभी तो बोलना नहीं जानता, अभी चलना नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर भावना है, वो बीज उसके अंदर है, पाप का बीज, वो नकारात्मक जो प्रतिक्रिया उसकी, वो पाप को प्रदर्शित करती है। और जैसे जैसे वो बढ़ता चलाता है, वो पाप उसके जीवन बढ़ता चला जाता है। तो कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं, कोई ये नहीं कह सकता परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर भी है और मनुष्य पापी भी, इसको समझना है। और बाइबल कहती है मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, एक दुष्ट इस बात का इनकार करता कि पापी नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। सो हमें समझना है, जो बड़ा दिन है वो इसका उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल एक अच्छे कार्य किए, न केवल अच्छी शिक्षाएं दी, न केवल लोगों से प्रेम दिखाया, न केवल प्रभु दया दी, लेकिन सबसे बढ़कर इस 23 पद में लिखा हुआ है, इसी मनुष्य को, अर्थात किसको, यीशु मसीह को, जो पूर्व ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर की पूरी निश्चित योजना से, परमेश्वर पहले से इसके लिए योजना बनाई थी, उसको क्या हुआ, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने अलाउ किया, परमेश्वर ने अनुमति दी, लेकिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, जो गुड फ्राइडे है, हम इसीलिए उसको गुड फ्राइडे मानते हैं, एक अच्छा फ्राइडे, बड़ा दिन गुड फ्राइडे, मसीहों के ज्यादा त्यौहार नहीं है, यद्यपि हर इतवार मसीहों का त्यौहार है, जबकि वो इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हर इतवार उनके लिए धन्यवाद का और आराधना का दिन है, ये उपासना दिन है, ये त्यौहार है हमारे लिए हर एक इतवार का। लेकिन सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया बड़े दिन के समय में, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन, एक अच्छा शुक्रवार जिसमें उसने एक अच्छा कार्य किया, वो दुखी शुक्रवार नहीं था। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सारे मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भाषा का हो, किसी कुल का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी रंग का हो, किसी रूप का हो, बड़ा हो छोटा हो, धनी हो निर्धन हो, सबके लिए सबसे उसने प्रेम किया। मैंने पहले ही बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, उसने अपने आप को मेरे और आपके पाप को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो गया, वो कीमत जो पाप के कारण मुझे और आपको चुकानी थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है उसने मेरे और आप पर प्रेम किया और मेरे और आपके पाप को लेकर के वो क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से होता है, विश्वास वचन को हम कान से सुनते हैं, अपने मस्तिष्क से उसको समझते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, मुंह से उसका अंगीकार करते हैं। और इस बात को हमें समझना है, ये कई बार कठिन लगता है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के छुटकारे के लिए सनातन योजना बनाई है और उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है ताकि वो मेरे आपके लिए केवल बड़ा दिन तक सीमित ना रहे। केवल अगर बड़ा दिन सीमित होता तो मैं और आप यहां ना होते, केवल यीशु मसीह केवल जन्म अगर उनका सीमित होता तो हम ना रहते, लेकिन जन्म अधूरा होता यदि वो उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करता। उसका उद्देश्य क्या था कि मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो, मारा जाए, गाड़ दिया जाए, वो पृथ्वी में गाड़ा गया। लेकिन चूंकि मृत्यु परमेश्वर से बड़ी नहीं है, अगर मृत्यु परमेश्वर से बड़ी होती, बलवंत होती, तो यीशु मसीह तीसरे दिन जीना उठे। लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सामर्थी है, और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद वो लोगों को दिखाई दिए इतिहास के साक्षी इस बात का, और तब लोगों के सामने वो क्रूस पर चढ़ा लिए गए। और तब 24 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु में से की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था, असंभव था। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसको ही जीवन ना मिलता, वही जीना उठाता, तो बेकार था। लेकिन ये असंभव था कि मृत्यु उसको अपने अधिकार में रखती, मृत्यु परमेश्वर के पांव के नीचे है। और ये बड़ी कहानी है, और वो ना केवल जी उठा लेकिन वो सर पे उठा लिया गया और फिर से वो आएगा। बाइबल की जो आजकल घटनाएं घटती हैं, बाइबल सारी चीज को वर्णन करती है, जो पुस्तक मैंने आपने पाई है छोटी वाली, अगर घर में जाकर इसको पढ़ेंगे और मती पहले पुस्तक के 23-24-25 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मालूम चलेगा जो घटनाएं आज घट रही हैं पहले से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकल चुकी थी और वो घटनाएं घट रही हैं। जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज राज पर चढ़ाई करेगा, बुडोल होंगे, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, मरी पड़ेगी, भाई भाई पर आक्रमण करेगा, ये सब बाइबल का वर्णन है और पूरा स्पष्ट है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म बड़ा दिन केवल बड़ा दिन तक सीमित नहीं रहा, बड़ा दिन पूरा जब वह परमेश्वर का बड़े काम, जब उसने अपने आप को बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु धर्म देने के लिए नहीं आए, प्रभु क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आए, प्रभु एक धर्म के अनुयायी बनाने नहीं आए, प्रभु मनुष्य को जीवन देने के लिए आए। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की दृष्टि में जाति कुछ भाग नहीं रखती, भाषा कुछ भाग नहीं रखती, देश कुछ भाग नहीं रखता, मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर ने जगत से, मनुष्य से, मुझसे और आपसे प्रेम किया, यह एक सच्चाई है, यह एक वास्तविकता है, और उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है एक दिन वो आएगा, आएंगे वो और आके अपने लोग अपने साथ ले जाएंगे, और जो कोई उसका तिरस्कार करेगा उसका परमेश्वर न्याय करेगा, और एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। आज मैं और आप उसका इनकार करते, स्वतंत्रता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो मनुष्य की सृष्टि में बहुत कुछ थी, लेकिन एक मुख्य बात थी जो सबसे बड़ी आशीष थी, वो जो आशीष थी चुनाव की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो चुन लें। और आदम ने वहीं पर गलती करी, उस स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग करा और इसलिए मनुष्य के देश में पाप आया। और आज भी मनुष्य स्वतंत्र है, जिसको चाहे वो चुन ले। अंधकार को चुनोगे तो अंधकार में मरोगे, ज्योति को चुनोगे तो प्रकाश पाओगे और जीवन पाओगे, मृत्यु को चुनोगे तो मृत्यु पाओगे, जीवन को चुनोगे तो जीवन पाओगे। मेरे प्रिय परमेश्वर का जन सत्य है, आबंधन नहीं है। और इसलिए बड़े दिन का संदेश यह है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, इसीलिए उसने कहा मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और सब लोगों के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका नाम यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, ये बड़े दिन का संदेश है। परमेश्वर सहायता करे कि मैं और आप उस संदेश को समझ सकें, उसके जन्म को समझ लें। हमने इन बच्चों के द्वारा ड्रामे को देखा, हमने गीतों को गाया। हर काम हमारा टाइम से होता है, हम 10 बजे टाइम है, 10 बजे हमने शुरू करा। और इसलिए आप लोगों जो आ चुके थे, आपने देखा, सुना, जाना है और इस संदेश को सुना है। ये सब कुछ इसलिए, इस बात को आप जान सके वास्तविक रीति बड़ा दिन क्या है। केवल आमोद प्रमोद नहीं है, ये फिल्म दिखा रही है, दुनिया दिखा रहा है, जो वो नहीं है, लेकिन इसके पीछे पवित्रता है, इसके पीछे धार्मिकता है, इसके पीछे न्याय है, इसके पीछे दया है, इसके पीछे परमेश्वर की करुणा है, इसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है। यह है, उसको समझना है। बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आए मेरे और आपके लिए, ताकि जो कि उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें।